इप्सिता जल्दी जल्दी नहा धोकर बाहर आई और अपने कपड़े चुनने लगी। उसने अभिमन्यु को ध्यान में रखकर गोल्डन कलर का एक बहुत ही स्टाइलिश सा टॉप निकाला और उसके नीचे ब्लैक जीन्स पहनी। गोल्डन हाई हील्स पहनकर उसने अपने लुक को पूरा किया। उसने अपने बाल खुले रखे और चेहरे पर बहुत ही लाइट मेकअप किया। इप्सिता शीशे में खुद को देखकर मुस्कुराई। वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसने अपना पर्स उठाया, उसमें फ़ोन रखा और जल्दी से घर से बाहर निकलने लगी। तभी उसने नंदिनी की मॉम की तरफ देखते हुए कहा, आंटी मैं जा रही हूँ, बाय। नंदिनी की मॉम ने इप्सिता को इस तरह जल्दी में बाहर निकलते देखा और कहा, अरे लेकिन बेटा नाश्ता तो कर लेती। इप्सिता ने अपार्टमेंट का दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, इट्स ओके आंटी, मैं बाहर कुछ खा लूँगी, बाय। इतना बोलकर इप्सिता ने गेट बंद किया और चुपचाप अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल गई। जैसे ही इप्सिता पार्किंग एरिया में आई, उसने देखा कि उसकी कार नहीं थी। नंदिनी कार ले जा चुकी थी। इप्सिता ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, अरे हम तो भूल ही गए थे कि नंदिनी कार ले गई होगी। इप्सिता ने जल्दी से कैब बुक की। इप्सिता अभिमन्यु से मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी और वो कैब के आने का इंतज़ार नहीं कर पा रही थी। वहीं दूसरी तरफ राजमहल में समर्थ अपने रूम से बाहर निकला और ऑफिस जाने के लिए निकल रहा था। जैसे ही वो राजमहल के गेट पर आया, उसने अपनी कार मंगवाई और वहीं गेट के पास कार के आने का इंतज़ार कर रहा था। तभी एक पार्सल देने वाला वहां आया और कहा, राजकुमारी अर्पिता के लिए ये पार्सल आया है। जैसे ही समर्थ ने पार्सल की तरफ देखा, वो हैरान होते हुए बोला, अर्पिता के लिए भला कौन पार्सल भिजवा सकता है। वो पार्सल की तरफ हैरानी से बोला, किसने भिजवाया है ये पार्सल। उस आदमी ने अपने कंधे उठाते हुए कहा, पता नहीं सर, हमें तो बस इसे यहाँ पर डिलीवर करने के लिए कहा गया था। क्या आप इसे अर्पिता जी को दे देंगे। समर्थ ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, जी हाँ लाइए, हम दे देंगे। इतना बोलकर समर्थ ने पार्सल लिया और उसे चारों तरफ से घुमाते हुए देख रहा था। उसमें कुछ फाइल जैसी चीज़ नज़र आ रही थी। समर्थ थोड़ा कन्फ्यूज़ होते हुए बोला, अर्पिता के नाम का यहाँ पर पार्सल आना मतलब, और ये तो कुछ फाइल जैसी चीज़ लग रही है, भला इसमें कैसे पेपर्स हो सकते हैं। क्योंकि जहाँ तक हमें पता है, अगर यहाँ पर कोई पेपर्स आते हैं तो वो मासा के नाम के या फिर अभिमन्यु के नाम से आते हैं, तो फिर अर्पिता के नाम से भला कोई पेपर्स यहाँ पर कैसे आ सकते हैं। समर्थ ये सोचते हुए अर्पिता के रूम की तरफ जाने लगा। तभी उसका पैर सीढ़ियों पर लड़खड़ाया और उसके हाथ से वो पार्सल ज़मीन पर गिर गया। ज़मीन पर गिरते ही उसकी पैकेट फट गई। समर्थ उस पैकेट को फटा देखकर बोला, ओ शिट, हमने गलती से अर्पिता के पार्सल को डैमेज कर दिया। जब उसने देखा कि फाइल के अंदर से पेपर्स निकल रहे थे, तो उसने सोचा कि पहले इन पेपर्स को ठीक करके उसे पार्सल के अंदर रख दे। जैसे ही समर्थ ने फाइल खोली, उसकी नज़र उन पेपर्स पर गई और उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। जैसे ही समर्थ की नज़र उन पेपर्स पर पड़ी, उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। उसने उन पेपर्स को देखते हुए कहा, व्हाट, ये पेपर्स जयराज ने अर्पिता को भिजवाए हैं। समर्थ ने तुरंत उन सारे पेपर्स को निकाला और देखा कि उन पेपर्स के फ्रंट पेज पर बड़ा बड़ा डाइवोर्स लिखा हुआ था। उन पेपर्स को देखते ही समर्थ को समझ नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसने धीमी आवाज़ में कहा, अगर अर्पिता को ये पेपर्स मिले तो पता नहीं वो क्या करेगी, वो तो खुद को संभाल की नहीं पाएगी। हम किसी नौकर को तो उन्हें ये पेपर देने के लिए नहीं कह सकते हैं, हमें खुद ही ये पेपर लेकर उनके पास जाना होगा। इतना बोलकर समर्थ अर्पिता के कमरे की तरफ आगे बढ़ा और जैसे ही वो अर्पिता के रूम के पास पहुंचा, उसने गहरी सांस ली और उन पेपर्स को लेकर अंदर गया। उसने अर्पिता के कमरे में नॉक किया, कमरा लॉक नहीं था। थोड़ा सा धक्का देते ही दरवाज़ा खुल गया। अर्पिता नहाकर बाहर निकली थी और अपने बालों को हेयर ड्रायर से सुखा रही थी। जैसे ही समर्थ ने अर्पिता की तरफ देखा, उसने धीमी आवाज़ में कहा, अर्पिता क्या हम अंदर आ जाएं। अर्पिता ने जैसे ही समर्थ की आवाज़ सुनी, वो हैरानी से उसे देखते हुए बोली, हाँ समर्थ आप यहाँ। इतना बोलकर उसने समर्थ को अंदर आने के लिए कहा और धीमी आवाज़ में पूछा, क्या बात है, आप इतनी सुबह सुबह हमारे कमरे में क्या कर रहे हैं। अर्पिता के बाल गीले थे और उसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, वो बड़ी ही प्यारी और मासूम लग रही थी। समर्थ उसके चेहरे की तरफ देखता ही रह गया। अर्पिता भी समर्थ को देख रही थी, वो बस एकटक उसे ही देख रहा था। अर्पिता की धड़कनें तेज़ हो गईं। उसने समर्थ की तरफ से अपनी नज़र हटाते हुए कहा, समर्थ आप क्या करने आए हैं यहाँ पर। इतना बोलकर अर्पिता ने जल्दी से शीशे की तरफ अपना मुंह घुमाया और सामने रखी सिंदूर की डिब्बी को उठाकर उसमें से अपनी मांग भरने लगी। समर्थ ने ऐसा करते देखकर कहा, कोई ज़रूरत नहीं है आपको अपनी मांग में सिंदूर भरने की। जैसे ही अर्पिता ने ये बात सुनी, वो हैरानी से समर्थ की तरफ देखते हुए बोली, ये क्या कह रहे हैं आप समर्थ। समर्थ उसके करीब आया और उसने उसके हाथ से वो सिंदूर की डिब्बी लेकर वापस मिरर के सामने रखते हुए कहा, वही जो आपने सुना। अर्पिता उसकी ये बात सुनकर गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, समर्थ हमें सुबह सुबह इस तरह का मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, छोड़िए और हमारे सिंदूर की डिब्बी हमें वापस करिए। अगर आप यहाँ पर फिर से वही पुरानी बातें करने के लिए आए हैं तो प्लीज़ यहाँ से जाइए, हमें उस बारे में कोई बात नहीं करनी है। समर्थ ने अर्पिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, कब तक अर्पिता, कब तक आप अपनी फीलिंग्स और हमसे भागती रहेंगी, हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। समर्थ बोल ही रहा था कि अर्पिता ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, कुछ नहीं जानते आप, कुछ नहीं पता है आपको, इसलिए प्लीज़ जाइए यहाँ से।
समर थरपिता की बात सुनकर गुस्से से उसे घूरते हुए बोला, चली जाएंगे हम, लेकिन पहले जिस काम के लिए यहाँ आए हैं वो तो कर दें। इतना बोलकर उसने अर्पिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, इधर आइए। अर्पिता समर्थ को घूरते हुए देख रही थी क्योंकि समर्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया था। वो उसे अपने साथ सीधे बेड की तरफ लाने लगा। अर्पिता अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप समर्थ, छोड़िए हमें। इतना बोलकर उसने अपना हाथ छुड़ाया। समर्थ उसे देखकर धीरे से अपना सिर हिलाते हुए बोला, लीजिए, आपके पति ने आपके लिए कुछ भिजवाया है। अर्पिता ने जैसे ही समर्थ की बात सुनी वो उसकी तरफ बड़ी ही हैरानी से देखने लगी। थोड़ी कंफ्यूजन में बोली, क्या क्या भिजवाया है उन्होंने। समर्थ ने अपने हाथ में पकड़े हुए उन डाइवोर्स पेपर्स को अर्पिता के हाथ में देते हुए कहा, लीजिए और खुद ही देख लीजिए। अर्पिता हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। उसने उन डाइवोर्स पेपर्स को अपने हाथ में लेकर देखा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने समर्थ की तरफ देखते हुए कहा, ये सब क्या है समर्थ, ये क्या मजाक है। समर्थ उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए बोला, मजाक, आपको ये मजाक लग रहा है, होश में आइए अर्पिता, आपके सो कॉल्ड पति ने आपको डाइवोर्स पेपर्स भेजे हैं। अर्पिता ने उन पेपर्स को देखा और ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, जयराज हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, वो हमारी शादी को इस तरह से नहीं तोड़ सकते। इतना बोलकर अर्पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उन पेपर्स को वहीं बेड पर फेंक दिया। अर्पिता को ऐसा बिहेव करते देखकर समर्थ उसके करीब आया। उसने उसके दोनों कंधों पर हाथ रखा और उसे झकझोरते हुए कहा, सीरियसली अर्पिता, आप अभी भी अपनी इस बेवजह की शादी को पवित्र बंधन का नाम दे रही हैं? हाउ कुड यू। समर्थ की बात सुनकर अर्पिता उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। समर्थ ने कहा, लिसन टू मी वेरी केयरफुली अर्पिता, आपका वो पति आपके लायक कभी नहीं था, जानती है ना ये आप, उसने कभी भी आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। जब से आपकी शादी हुई है क्या किसी भी दिन आप खुश रही हैं?
अर्पिता समर्थ की बात चुपचाप सुन रही थी। उसने समर्थ का हाथ अपने कंधे से हटाते हुए कहा, छोड़िए हमें, हमें जयराज से बात करनी होगी, वो हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। इतना बोलकर अर्पिता ने अपना मोबाइल फोन उठाया और जयराज को कॉल करने लगी। समर्थ उसे इस तरह जयराज को कॉल करते देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ गया। उसका मन कर रहा था कि वो अर्पिता के हाथ से उसका मोबाइल फोन छीन ले, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया और बड़ी ही शांति से उसने अर्पिता की तरफ देखा। अर्पिता काफी ज्यादा परेशान लग रही थी, उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि अब उसे क्या करना है और क्या नहीं। वो अपना फोन उठाकर जयराज को कॉल कर रही थी मगर उसका हाथ कांप रहा था। समर्थ उसके कांपते हुए हाथ को देखकर एक गहरी सांस लेते हुए बोला, अर्पिता अपना फोन रखिए। अर्पिता ने समर्थ की बात नहीं सुनी। तभी समर्थ ने कहा, वो आपका फोन नहीं उठाएंगे, आप बेकार में ही परेशान हो रही हैं। इतना बोलकर समर्थ अर्पिता के करीब आने लगा। अर्पिता ने उसकी तरफ से अपना मुंह घुमाते हुए कहा, उन्हें हमसे बात करनी ही होगी, वो हमें इस तरह से डाइवोर्स नहीं दे सकते, मासा की तबीयत पहले ही खराब है, अभिमन्यु भाईसा यहाँ नहीं है, हम कैसे ये सब कुछ हैंडल करेंगे, और अगर मासा को पता चला तो उनकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, हम जयराज जी से माफी मांग लेंगे। इतना बोलकर अर्पिता ने दोबारा नंबर डायल किया और बेल जा रही थी, लेकिन जयराज उसका कॉल पिकअप नहीं कर रहा था। टू बी कंटिन्यूड।